नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं और आज का विषय है गायत्री महामंत्र की महत्ता। ये स्रोत हमें समझाता है कि एक औसत भारतीय के लिए इस मंत्र का क्या मतलब है, क्या महत्व है।
जी,
पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मंत्र बड़े सार्थक होते हैं, उनमें शक्ति होती है। सोचिए, एक मामूली सा मंत्र भी सपेरे को सांप का जहर उतारने की ताकत दे देता है।
हाँ, ये बात तो है।
हम आज की दुनिया में यंत्रों, मतलब मशीनों, गैजेट्स, इनको बहुत महत्व देते हैं, पर गुरुदेव कहते हैं कि मंत्रों का असर कहीं ज्यादा गहरा होता है, आध्यात्मिक स्तर पर।
बिल्कुल।
तो चलिए इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। पूज्य गुरुदेव यंत्र और मंत्र में एक साफ फर्क बताते हैं। यंत्र यानी भौतिक चीजें, हमारा शरीर भी एक यंत्र ही है, ये सब नश्वर हैं।
हाँ, ये बदलते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शरीर टिकता नहीं।
सही कहा। लेकिन मंत्र वो विचार हैं, अध्यात्म हैं, वो इंसान को स्थायी शांति दे सकते हैं, सही सोच दे सकते हैं।
और देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात गुरुदेव बताते हैं। वो कहते हैं कि जीवन की ज्यादातर मुश्किलें, दुख, परेशानियां, ये सब विचारों की गड़बड़ी से आती हैं, आध्यात्मिक दिशा की कमी, जिसे वो मंत्र की कमजोरी कहते हैं।
अच्छा, मतलब पैसों की कमी या बीमारी से नहीं।
वो बाहरी कारण हो सकते हैं, पर मूल में अक्सर विचारों का भटकाव होता है। लोग सोचते हैं पैसा, पद मिल जाए तो सुख मिलेगा, पर वो टिकता नहीं, बल्कि चिंताएं और ले आता है।
हाँ, ये तो अनुभव की बात है।
तो गुरुदेव के अनुसार मंत्र सिर्फ रटने की चीज नहीं है, ये एक सोच है, एक दिशा है, जो दुखों को सुख में बदल सकती है, अगर सही ढंग से समझा और अपनाया जाए।
ये तो हुई मंत्रों की सामान्य बात, पर इसमें गायत्री मंत्र इतना खास क्यों है, उसका क्या स्थान है?
हाँ, तो पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र को सबसे ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि।
क्यों?
क्योंकि सीधा बुद्धि पर असर करता है, मनुष्य की समझ के स्रोत को खोलता है। इसका काम सिर्फ दुनियावी जरूरतें पूरी करना नहीं है, जैसे सपेरे का मंत्र जहर उतारता है, गायत्री का मुख्य प्रभाव आध्यात्मिक है। ये सद्बुद्धि देता है, सही समझ।
सद्बुद्धि,
जी। इसीलिए इसे वेद माता भी कहा गया है। गुरुदेव मानते हैं कि चारों वेदों का पूरा सार इन 24 अक्षरों में है, जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ का नक्शा होता है ना, वैसे ही।
ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गुदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम इसे सुनते तो हैं, पर इसका गहरा मतलब क्या है गुरुदेव के अनुसार?
ये असल में ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना है, बहुत सीधी सरल प्रार्थना। इसका भाव है कि हे परमात्मा, जो प्राण स्वरूप है, दुख दूर करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, तेजस्वी हैं, हम आपके उस सबसे अच्छे तेज को, प्रकाश को अपने अंदर धारण करें और आप हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाएं।
सही रास्ते पर, सद्बुद्धि पर बहुत जोर है।
दोनों लाभ अपने आप मिलने लगते हैं। उपासना का मतलब भी यही है, ईश्वर के पास बैठना। जैसे बच्चा माँ के पास बैठकर सुकून पाता है, वैसे ही आत्मा को ईश्वर के पास शांति मिलती है, पोषण मिलता है।
वो तो ये सद्बुद्धि मिलने से होता क्या है, किस तरह के फायदे होते हैं, कुछ उदाहरण है?
हाँ हाँ, गुरुदेव कई लाभ गिनाती हैं। साधक को एक स्थायी शांति मिलती है, अंदर का संतोष, मन के जो विकार होते हैं, गुस्सा, लालच, मोह, वो शांत होते हैं।
अच्छा।
जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, पर उनसे जूझने की ताकत मिलती है, घर गृहस्थी सुखी होती है।
और आध्यात्मिक स्तर पर?
आध्यात्मिक स्तर पर स्वभाव सुधरता है, दूसरों की सेवा का भाव जागता है और व्यक्ति साधारण इंसान के स्तर से उठकर, जिसे गुरुदेव कहते हैं, नर से नारायण बनने की राह पर चल सकता है। उन्होंने आम्रपाली का उदाहरण भी दिया है।
हाँ, वो घणिकाधीश हैं।
जी, जो बाद में बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर, जिनमें गायत्री जैसी ही विचार बदलने की शक्ति थी, उनके एक महान शिष्या बनी।
वाह। लेकिन एक मिनट, आपने कहा कि ये फायदे एकदम से नहीं मिलते।
जी,
ये पात्रता वाली बात क्या है, ये थोड़ी समझाइए।
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पूज्य गुरुदेव पात्रता पर बहुत जोर देती हैं। वो कहती हैं कि मंत्र का पूरा लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति के अंदर के दोष, जिन्हें कषाय कलमश कहा गया है, मतलब राग, द्वेष, अहंकार, वासनाएं, ये सब धुल जाते हैं।
जैसे जमीन साफ होगी तभी बीज उगेगा।
बिल्कुल सही। जैसे बंजर जमीन पर बीज डालने से फायदा नहीं, पहले उसे उपजाऊ बनाना पड़ता है। वृंदावन के माधवाचार्य का उदाहरण है, जिन्हें 24 साल लगे गायत्री उपासना में सिद्धि पाने में, तब तक उनके अंदर के दोष पूरी तरह साफ हो चुके थे।
24 24 साल।
हाँ, या देव मुरारी बाबा जिन्होंने अपने तप के बल से राजा मानसिंह की एक बड़ी समस्या हल की थी। तो गुरु का काम भी यही है, वो इन कषाय कलमशों को साफ करने में मदद करते हैं, जैसे किसान जमीन तैयार करता है।
मतलब सिर्फ माला जपना काफी नहीं?
नहीं, बिना पात्रता के, बिना अंदर की सफाई के केवल जाप से वो गहरे लाभ नहीं मिलते जिनकी हम बात कर रहे हैं।
इस साधना में यज्ञोपवीत का भी जिक्र आता है, उसका क्या रोल है?
हाँ, यज्ञोपवीत को गुरुदेव गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा मानती हैं, एक साकार रूप।
अच्छा।
उसके जो 9 धागे हैं वो गायत्री मंत्र के 9 शब्दों के प्रतीक हैं।
अच्छा।
ये सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि ऋषियों ने इसे बहुत सोच समझ कर बनाया है। ये सीने से लगकर एक तरह से आध्यात्मिक माँ की तरह साधक को याद दिलाता रहता है, उसके व्रत की, उसके लक्ष्य की।
तो इसे गायत्री के साथ जोड़ के देखना चाहिए।
जी हाँ, बिल्कुल।
तो अगर हम सार निकालें तो पूज्य गुरुदेव का मुख्य संदेश क्या हुआ?
संदेश बहुत साफ है, गायत्री मंत्र सिर्फ कुछ शब्द दोहराना नहीं है, ये एक जीवन बदलने वाला विचार है। ये सद्बुद्धि की, सही समझ की प्रार्थना है।
और इसका पूरा फायदा लेने के लिए पात्रता जरूरी है।
बिल्कुल, अंदर की शुद्धि, पात्रता का विकास सबसे जरूरी है, और इसमें गुरु की भूमिका अहम हो सकती है। ये एक ऐसा तरीका है जो अगर सही से अपनाया जाए तो दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह की मुश्किलों का हल दे सकता है।
और एक बात और, गुरुदेव ये भी कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, थोड़ा भगवान के लिए, समाज के लिए भी जीना चाहिए। मतलब सामान्य जीवन से थोड़ा ऊपर उठकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए।
जी हाँ, ये भी उनके संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।
हाँ।
कि अगर एक मंत्र में, एक सही विचार में इतनी शक्ति है कि वो हमारी बुद्धि को बदलकर पूरा जीवन बदल सकता है, तो हमारे रोजमर्रा के जो छोटे छोटे विचार हैं, हमारे इरादे हैं, वो जाने अनजाने हमारे जीवन को किस तरफ ले जा रहे होंगे।